नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या घड़ी में रात के 8:30 बजते ही हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज की हमारी मेहमान है वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्वागत आपका।
धन्यवाद धर्मेंद्र।
कल से T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का शुरू हो रहा है संयुक्त अरब अमारात में। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है अभी तक के अगर जो 10 टूर्नामेंट्स हुए उसके आंकड़ों को देखें, लेकिन भारत की दावेदारी इस बार आपको कैसी लग रही है? क्योंकि भारतीय टीम ऐसे तो अच्छा प्रदर्शन करती है लेकिन वर्ल्ड कप के मंच पर जाकर कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाती है।
देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ ये नहीं, जो पिछला भी वर्ल्ड कप हुआ था, ऑब्वियसली जैसा आपने कहा कि दावेदारी हमेशा रहती है क्योंकि खिलाड़ी हैं आपके पास। ऐसा नहीं है कोई भी एक डिपार्टमेंट ऐसा हो जो आपको लगे कि हल्का है, चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। पर वर्ल्ड कप जैसी जो वाला जो स्टेज होता है, वहां पे सिर्फ आपका टैलेंट नहीं होता है, वहां पे और बहुत सी चीजें होती हैं। आप किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरते हैं, आपके पास जो 15-16 हैं वो तो अपने आप में काफी हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर मैच में आप किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरते हैं, उस दिन आपके खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि अगर कहीं मैच फंसता है तो उसको कैसे निकाला जाए, और खुद पे जो भरोसे वाली चीज है, शायद वही एक चीज है जो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम को अलग बनाती है बाकियों से, क्योंकि वो इतना खेलते हैं कि वो चीजें उनमें अपने आप आ जाती है इतने सालों में। हालांकि पिछले कुछ समय में भारतीय विमेन्स टीम को भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला है, उन्होंने बहुत खेला है, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना है कि उस एक्सपोजर को, उस एक्सपीरियंस को ये आगे किस तरह से अभी यहां पे दिखा पाते हैं।
हम आपके साथ इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन अब पहले सुर्खियां। भारत ने पेरू में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप के चौथे दिन 5 और स्वर्ण पदक जीते। संयुक्त अरब अमारात में कल से महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत होगी। भारत का पहला मैच शुक्रवार को न्यूजीलैंड से होगा। भारत ने तुर्की को हराकर BWF विश्व जूनियर मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, और भारत अगले साल खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। प्रतियोगिता में 24 देश भाग लेंगे। तो अब चलते हैं निशानेबाजी की तरफ। भारत ने पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप के चौथे दिन 5 और स्वर्ण पदक जीते। टूर्नामेंट में भारत 10 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित 14 पदकों के साथ शीर्ष पर है। एक रिपोर्ट।
चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर निशानेबाजों के सटीक निशाने साधने का सिलसिला लगातार जारी है। दुनिया की तमाम दिग्गज टीमों के बीच भारतीय शूटर्स ने अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी है। चौथे दिन महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में दिव्यांशी ने अचूक निशाने साधते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 35 अंक जुटाकर इटली की क्रिस्टीना मैग्नानी को 2 अंकों से हराया। दिव्यांशी ने तेजस्विनी और विभूति भाटिया के साथ मिलकर जूनियर महिला 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। शीर्ष निशानेबाज मुकेश नेलवली ने 2 और स्वर्ण पदक हासिल किए। इस चैंपियनशिप में अब उनके पदकों की संख्या 3 हो गई है। मुकेश ने 585 अंकों के साथ जूनियर पुरुष 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। टीम स्पर्धा का स्वर्ण मुकेश नेलवली, सूरज शर्मा और प्रद्युम्न सिंह ने पोलैंड की टीम को 3 अंकों से हराकर अपने नाम किया। 5वां स्वर्ण पदक जूनियर पुरुष 50 मीटर राइफल टीम स्पर्धा में मिला। शौर्य सैनी, वेदांत नितिन वाघमारे और परीक्षित सिंह बरार की टीम 1753 अंक बनाकर पहले स्थान पर रही। जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में 51 देशों के 560 से अधिक निशानेबाज प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत ने 6 अक्टूबर को समाप्त होने वाली प्रतियोगिता में 61 निशानेबाजों के दल को मैदान में उतारा है। उम्मीद है भारत के पदकों की संख्या अभी और बढ़ेगी। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
उत्तरा, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, अगर हम बात करें इन जूनियर शूटर्स की, क्या कमाल का प्रदर्शन। दुनिया की अच्छी अच्छी टीमें वहां पर मौजूद हैं और उसके बावजूद भारतीय टीम अगर देखें तो मेडल टैली में टॉप पर है इस समय।
और बहुत जरूरी है क्योंकि हम लगातार किसी भी खेल में, ना सिर्फ शूटिंग में बल्कि लगातार हम ये बात करते रहते हैं कि अगली पीढ़ी कहां से आएगी, अगला बैच कहां से आएगा। और ज्यादातर खेलों में अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को मिलता है कि एक गोल्डन जनरेशन होता है और उसके बाद जो आते हैं वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं या परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वो हम बैडमिंटन में वो चीज देख रहे हैं, हमने बॉक्सिंग में वो चीज देखी, हमने रेसलिंग में भी एक कुछ हद तक वो देखा जा रहा है, खास करके पुरुष रेसलिंग में। तो वो एक बहुत जरूरी है कि एक लाइन बनी रहे ताकि जो निकल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, उनको रिप्लेस किया जाए। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जूनियर जो कंपटीशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पेरिस ओलंपिक्स की भी बात करें तो जो हमारे शूटर्स गए थे वो ऐसा नहीं है कि बहुत सीनियर हैं, शूटिंग उन खेलों में से है जहां पे एज लिमिट नहीं होती है, पर हमारी जो टीम थी अगर हम देखें, चाहे पुरुषों में हो या महिलाओं में हो, ज्यादातर 22-25 साल के ही हमारे शूटर्स गए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत सीनियर थे, लेकिन हाँ उन्होंने सीनियर लेवल पे अब परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो अगली पीढ़ी कहां से आएगी हमें नहीं पता, 4 साल बाद इनमें से कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे। 4 साल पहले टोक्यो में, 3 साल पहले टोक्यो में जो थे उसमें से कई शूटर्स अब नहीं है उस लेवल पे जो परफॉर्म कर रहे हैं। इस पेरिस में से और कितने निकल पाएंगे, कितने कंटिन्यू भी करते हैं हमें नहीं पता कि वो रहते हैं नहीं रहते हैं। तो एक जो सिलसिला बना हुआ है वो बहुत जरूरी होता है, और इस प्रदर्शन से हमें कम से कम इस बात की तो तसल्ली रहेगी कि NRAI ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको अब सही से फॉलो किया जा रहा है, जैसा कि बाकी देशों में अक्सर होता है।
जी, और शूटिंग में वैसे भी कहें तो एशिया में न सिर्फ बल्कि ओलंपिक में भी हमारा दावा हमेशा मजबूत रहा है, और ये जो जूनियर शूटर्स हैं ये संकेत दे रहे हैं कि वो दावेदारी आगे भी और मजबूत तरीके से सामने आएगी।
बिल्कुल, और शूटिंग जिस तरह का खेल है उसमें चीजें और मुश्किल ही होती जा रही हैं। आज से 5 साल पहले तक, ऐसा 5 या 7 साल पहले तक चाइना से एक आध आते थे, बहुत अच्छे आते थे लेकिन उस तादाद में नहीं आते थे जिस तरह से अब आ रहे हैं। यूरोप का दबदबा होता था, अब वो धीरे धीरे फैलता जा रहा है पूरे विश्व में। तो वो सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखें तो और ज्यादा बड़ी बात हो जाती है ये, क्योंकि जब आपका फील्ड स्प्रेड आउट होता है और एक स्पोर्ट ज्यादा पॉपुलर होता है तो कंपटीशन और बढ़ता है। आपको नहीं पता कि अगला आपका जो कंपटीटर होगा वो जरूरी नहीं है कि यूरोप से, जर्मनी से या चाइना से आएगा, वो नाइजीरिया या ग्रीस से निकल के भी आ सकता है। ऐसे में अपने आप को साबित करना ये दिखाता है कि जो एक, जैसा मैंने कहा कि एक सिस्टम जो बन गया है उस पर भरोसा करना बहुत जरूरी है।
और अब चलते हैं क्रिकेट की तरफ। दुबई में कल से महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत होगी, बल्कि संयुक्त अरब अमारात हम कह सकते हैं, टूर्नामेंट का पहला मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड जबकि दूसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। पिछले चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और भारत को खिताब का बड़ा दावेदार माना जा रहा है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
धनाधन क्रिकेट के इस फॉर्मेट में पिछले 3 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम लगातार 4थी बार खिताब जीतेगी या कोई दूसरी टीम इस बार चैंपियन बनेगी, ये बड़ा सवाल है। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम इस बार एलिसा हीली की अगुवाई में मैदान पर उतरने जा रही है। 10 टीमों के बीच हो रहे इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को हराना सभी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड हैं। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष पर रहने वाली 2 टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। उम्मीद की जा रही है कि संयुक्त अरब अमीरात की पिचें स्पिनरों के लिए मददगार होंगी और ऐसे में भारत का दावा भी मजबूत माना जा रहा है। कप्तान हरमनप्रीत कौर को भरोसा है कि उनकी टीम बेस्ट है और इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी।
If I talk about this team, we have few players who've been playing for longer time and they know their roles really well. And yeah, I'm quite confident with this team. And I can say that yeah, this is the best team in this World Cup. We try to play good cricket. I'm quite confident on my team. I know what they are doing and what they're capable of. And really happy the way we have prepared in last couple of weeks. And they are feeling really good and positive about that.
बल्लेबाजी विभाग में सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना पर जिम्मेदारी होगी, जबकि हरमनप्रीत और ऋचा घोष को बीच के ओवर में और डेथ ओवर में अपनी भूमिका निभानी होगी। हरमनप्रीत 2018 से टीम की कप्तानी संभाल रही हैं और इस बार उन पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव होगा। भारतीय टीम ने वार्म अप मैच में पहले वेस्टइंडीज और फिर दक्षिण अफ्रीका को हराकर अच्छे संकेत दिए हैं। इन दो जीत से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा होगा। आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय महिला टीम ने वैश्विक मंच पर अपना दबदबा बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। टीम के कोच अमोल मजुमदार मानते हैं कि इस बार परिणाम अच्छा आएगा।
कंडीशंस वुड बी सिमिलर to what we are over here in India. We did a lot of fitness and fielding. So as far as game time is concerned, I think we are on it. As I said, we are ready to go.
मुख्य मुकाबले में भारत की टीम अपना पहला मैच दुबई में शुक्रवार को न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। क्रिकेट के दीवानों को उम्मीद है कि न सिर्फ आगाज अच्छा रहेगा बल्कि अंजाम भी अच्छा होगा। हरमनप्रीत की अगुवाई वाली ये सेना इस बार खिताब के साथ स्वदेश लौटना चाहेगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
तो प्रैक्टिस मैचेस में बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा भारतीय टीम का, और अगर हम कंडीशंस की बात करते हैं तो जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी सुना कि उसी तरह की कंडीशन है जैसा कि भारत में परिस्थितियां होती हैं, तो इसका कितना बेनिफिट मिल सकता है?
देखिए, एक तो T20 फॉर्मेट ऐसा है जहां पे कंडीशंस बहुत ज्यादा उस तरह से मैटर नहीं करते, क्योंकि 3-3.5 घंटे का मैच होता है, उसमें बहुत ज्यादा चीजों में परिवर्तन होता नहीं है। तो 50 ओवर की भी तुलना में देखा जाए तो कंडीशंस एक तरह से दोनों टीमों के लिए बराबर रहती हैं। ये जरूर है कि भारतीय टीम को फेमिलियरिटी का फायदा होगा, पर जितनी आजकल वर्ल्ड में क्रिकेट खेली जा रही है, हर कंट्री हर कंडीशन के हिसाब से एक तरह से यूज्ड टू होती है। दूसरी बात, भारतीय टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा पहला मैच, क्योंकि अगर हम ग्रुप की भी बात करें और आपको अब टॉप टू में करना है तो एशिया में भारत की टीम जरूर बाकी टीमों से बेहतर है आज की तारीख में, पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया उनके सबसे बड़े मुकाबले होंगे। और अगर आप पहला मैच जो क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ है, अगर ये मैच इंडिया जीत जाती है तो उनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आपके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जो बाकी की टीमें हैं चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उनके मुकाबले भारतीय टीम जरूर बेहतर है ऑन पेपर भी और ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से भी, फॉर्म के हिसाब से भी और हेड टू हेड के हिसाब से भी। तो पहला मुकाबला किस तरफ जा रहा है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर बाय चांस इंडिया हारती है तो आपके ऊपर ना सिर्फ बाकी मैचेस जीतने का प्रेशर बढ़ेगा बल्कि आपके ऊपर एक मेंटल दबाव भी आएगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, आपके पास ऑप्शंस नहीं रह जाएंगे। तो पहला मैच जिस तरफ जाएगा उससे बाकी की भारतीय पूरी किस तरह से जाएगी ये कैंपेन वर्ल्ड कप की, वो उस पर जरूर डिपेंड करेगा
जी। और उधर चेन्नई में भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने अनाधिकृत क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम को 2 विकेट से हरा दिया। टीम सऊदी ने भारत के खिलाफ इस महीने शुरू होने वाली 3 टेस्ट मैच की श्रृंखला से पहले न्यूजीलैंड की कप्तानी छोड़ दी है, उनकी जगह टॉम लैथम को नया कप्तान नियुक्त किया गया है। उधर पाकिस्तान से खबर है कि बाबर आजम ने आज पाकिस्तान की वनडे और 2020 टीम के कप्तान पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में फिर से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में खेले गए दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 6 विकेट लेने के बाद उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़कर एक बार फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है। लखनऊ में ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट मैच में आज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रणजी चैंपियन मुंबई ने शेष भारत के खिलाफ 9 विकेट पर 536 रन बना लिए थे। सरफराज खान 221 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत ने ग्रुप ई के आखिरी मैच में तुर्की को 99 के मुकाबले 110 अंकों से हराकर चीन में चल रही BWF विश्व जूनियर मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने पहली बार रिले स्कोरिंग प्रणाली का इस्तेमाल विश्व जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में किया है। इसमें विजेता टीम को मुकाबला जीतने के लिए 10 मैचों में 110 अंक तक पहुंचना होता है। भारत अगले साल खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारतीय खो खो महासंघ KKFI और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने इसकी घोषणा की है। इस आयोजन में 24 देश भाग लेंगे जिसमें 16 पुरुष टीमें और कई महिला टीमें शामिल होंगी। विश्व कप से पहले KKFI ने इस खेल को बढ़ावा देने के लिए 10 शहरों के 200 स्कूलों में खो खो खेल के आयोजन की योजना बनाई है। और फुटबॉल से खबर है, मुंबई में ISL में इस समय मुंबई FC का मुकाबला बेंगलुरु FC के साथ चल रहा है। कल भुवनेश्वर में मेजबान ओडिशा FC का मुकाबला केरला ब्लास्टर्स एफसी से होगा। टेनिस से खबर है, सुमित नागल शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के पहले ही दौर में बाहर हो गए और स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने चीन ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो उत्तरा, स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया
दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति, नमस्कार।